और कैसे हो मेरे दोस्तों, सब ठीक?
बहुत बढ़िया।
मैं मंजू गुप्ता आज फिर इस परछाई चैनल में आप लोगों के लिए एक लेकर आई हूँ अनोखी दास्तान कोरोना की। आज बस कुछ छोटे से काम के लिए बाजार गई थी, मेरे पति भी साथ में थे। असल में मुझे मास्क खरीदने थे, तो मैंने सोचा कि मास्क खरीदे हुए तो इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो क्यों ना बनवा लिए जाए। मैं बस घर से कपड़ा लेकर पैदल ही मास्क बनवाने के लिए जा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2-3 दिन पुरानी है। मैं बाज़ार गई, जूट का थैला मैंने हाथ में लिया हुआ था, अपने पति के साथ बातें करती हुई मस्ती में चली जा रही थी। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि सड़क के एक छोर पर मैंने एक बुज़ुर्ग दंपत्ति को देखा। बुज़ुर्ग दंपत्ति देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, सिख परिवार से थे। जो सरदार जी थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा चश्मा पहना हुआ था, सफ़ेद रंग का रुमाल अपने मुंह पर मास्क की जगह बांधा हुआ था और कुछ हल्के से पीले रंग का कुर्ता पजामा पहना था, साथ में कोल्हापुरी चप्पल थी। उनका सहारा लिए हुए लड़खड़ाती हुई उनकी पत्नी गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहने सिर पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थी, मुंह पर वही एक दुपट्टा लपेटा हुआ था, आंखों में आंसू थे। ऐसी तरलता देखकर पता नहीं क्यों मन बड़ा उदास सा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि एक और सरदार जी उनसे कुछ बात कर रहे हैं। उनकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वे उनसे कुछ मांग रहे हैं। बुज़ुर्ग दंपत्ति अपनी समस्या उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे और जो तीसरे सरदार जी थे वो उन्हें सिर्फ यही बताए जा रहे थे कि तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि मैं उनसे थोड़ा सा दूर थी इसलिए कुछ टूटती हुई सी आवाज़ें मुझ तक पहुंच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के तार उस पीड़ा के साथ जुड़ने लगे थे। लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है कि इनकी आंखों में आंसू हैं, शायद इन्हें मदद की दरकार है। मैं अपने पति को बोल रही थी कि देखिए कुछ ना कुछ तो समस्या है, वे भी मेरा साथ तो देना चाहते थे पर कुछ बोले नहीं। कारण क्या था मुझे पता नहीं, पर मेरा मन बार बार खींच रहा था उन्हीं की तरफ। मैं मास्क वाले के पास खड़ी रही लेकिन मेरा ध्यान दूसरी तरफ ही भटकता रहा कि आखिर इनके बीच में बातचीत चल क्या रही है, आखिर हुआ क्या है। मन में ये जो प्रश्न उठ रहे थे इनको जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी क्योंकि मनुष्य है ना, आजकल अपने आप में निराश ज़्यादा है, भयभीत हैं, इसलिए किसी के कष्ट को पूछने से पहले अपने आप को ही दूर कर लेते हैं। बस शायद इसी उथल पुथल के साथ मैं भी आगे बढ़ चली, क्योंकि मुझे टेलर तो मिला नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा और आगे चली गई कि चलो थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक मैं दूसरे काम करके आती हूँ। तो मैं दूसरे काम के लिए आगे बढ़ गई। मुश्किल से 5 या 7 मिनट हुए होंगे क्योंकि मेरा आगे बढ़ने पर भी काम नहीं हुआ, तो मैं उल्टे पांव सड़क के उसी किनारे पर आ गई जहाँ से चल रही थी। मैंने देखा कि वह बुज़ुर्ग दंपत्ति अब अकेले ही सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा मन रुका नहीं, मैं लपक के उनके पास तक पहुंची और जाकर मैंने उनसे उनकी पीड़ा जाननी चाहिए। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची वे डर गए, शायद इसलिए कि एक अनजाना व्यक्ति उनके सामने आकर इस तरह की बात करे कि माताजी क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, कोई तो कारण है, आप मुझे बता सकती हैं। लेकिन वो दोनों चुप, अपनी आंखों से, हैरानी से, फटी हुई आंखों से मुझे देख रहे थे और कुछ दूरी बना ली थी उन्होंने। और मुझे देखकर हैरानी तो तब हुई जब माता जी उन सरदार जी के पीछे दुबक गई। मैंने उनको समझाते हुए कहा कि आप डरिए नहीं, मैं आपकी समस्या का कुछ हल करना चाहती हूँ। उन्होंने डरते हुए कांपते हुए होठों से अपनी बात मुझे बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि हम पास ही तिलक नगर में रहते हैं, हमारी एक अच्छी खासी कोठी है, हम गरीब नहीं हैं, लेकिन आज मजबूरी ने हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज सड़क पर भीख मांगने के लिए उतर आए हैं। वे लगातार रोती जा रही थी और अपनी बात बताती जा रही थी। साथ ही सरदार जी भी बोल रहे थे कि क्या करें, हम दोनों की पेंशन आती है, लेकिन आज झगड़े के कारण, कोरोना के कारण हमारी पेंशन रुक गई। बेटी भी है, घर में बेटी है, लेकिन उसका तलाक हो गया है। उसका एक बेटा है जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन उसकी अभी एक महीने से फीस नहीं दी गई है। स्कूल से नाम काटने की पर्ची आ चुकी है। घर में सब कुछ होने के बावजूद खाने के लिए नहीं है, इसलिए सड़कों पर उतर आए हैं, क्या करें। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहती चली जा रही थी। बोलते जा रहे थे अपने कष्ट को, अपने दुख को, जिसे मैं महसूस कर पा रही थी, और मेरे दोनों हाथ उन्हें सिर्फ तसल्ली दिए जा रहे थे कि नहीं, वाहे गुरु सब ठीक करेंगे, गुरु जी ने अगर जीवन दिया है तो वो हमारी रक्षा भी करेंगे, हौसला मत छोड़िए। लेकिन वो रोते रोते कही जा रही थी, कुड़िए तेनू की पता मैं जिंदगी के किस पड़ाव तक पहुंच गई हूँ, हुण ते खाण दे भी लाले पड़ गए हैं। असा तो सोच लिता है कि अपने आप नु खत्म कर देते हैं। एक पुत्र है जे कुछ करदा ही नहीं, अपनी बीवी नाल खलोते रहंदे ने, सानू कोई नहीं पूछदा। मैं की करां, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो मेरा मन करदा है कि पूरी फैमिली ही मर जाण, अब तो वाहे गुरु जी दी शरण जाण दा मन करदा है। मैंने उन्हें समझाया कि माता जी, इस तरह का निर्णय लेना गलत है। भोजन की समस्या है, उसकी व्यवस्था मैं किए देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है। मैंने उन्हें कहा मैं ऑर्डर कर देती हूँ और कल तक आपके घर में राशन पहुँच जाएगा। जितनी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उतनी मैं मदद करने की कोशिश करूँगी। सरदार जी मेरी बात सुन रहे थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लगातार वे अपनी बात बताए जा रहे थे कि मैं बहुत अच्छे ओहदे से रिटायर हुआ हूँ, मेरी पेंशन रुक गई है, बेटा मेरा किसी काम का नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं करता है, अलग रहता है, हमें नहीं पूछता है, और साथ में हमारा मकान भी गलत धोखे से अपने कब्जे में ले लिया है, उसका अलग केस चल रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, जीने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। मैंने फिर उन्हें भी तसल्ली देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, मैं राशन की समस्या को हल कर सकती हूँ। मैंने उनसे उनका पता पूछा, फ़ोन नंबर पूछा। उन्होंने पहले तो चुप्पी साध ली, जब मैंने उनसे कहा कि आप अपना मुझे फ़ोन नंबर दे दीजिए तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया और अपना पता भी मुझे दिया। माता जी फ़ोन नंबर देते ही लगातार मुझे कहे जा रही थी कि तुम इस फ़ोन नंबर पर मेरी बेटी को बता दो कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप घर में बताकर आए हैं कि आप सड़कों पर भीख मांगने के लिए निकल आई हैं। बोली हाँ, मेरी बेटी को पता है इस चीज़ के लिए कि हम सड़कों पर भीख मांगने आए हैं, लेकिन पुत्र मैं की करा, 10-10 रुपये दिन दे ले लोग, 10-10 रुपया तक की होंदा है। उनकी मुट्ठी में एक सफ़ेद रुमाल बंधा हुआ था जिसके अंदर कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ पैसे हैं जो उन्होंने घूम घूम कर भीख के रूप में लोगों से लिए होंगे। मैंने उनसे ज़्यादा बातें नहीं की, बस उनसे उनका पता लिया फ़ोन नंबर लिया और घर आ गई ये कहकर कि ठीक है मैं कल आपके यहाँ राशन भिजवा दूँगी। अब दोस्तों मैं घर तो आ गई, मन बेचैनी से उथल पुथल हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने रास्ते से ही उनके सामान का ऑर्डर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पति साथ में थे। मैंने उनको कहा कि आप ऑर्डर कर दीजिए, तो मेरे पति की खासियत है कि वो मेरी किसी बात को मना नहीं करते, हर चीज़ में साथ देते हैं, तो उन्होंने मेरे कहने पर ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर में मैंने कुछ दाल चावल चीनी इस तरह की चीज़ें कर दी, जिससे कि उनका कुछ दिन का काम हो जाए। और मन में विचार कर लिया कि क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने मन में विचार किया कि मैं अपने दोस्तों को कहूँगी, तो अगर हम हफ्ते हफ्ते का भी राशन उनके लिए मुहैया कराएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। इतना तो मुझे अपनी इस संस्था पर विश्वास है कि टीचर कम्युनिटी एक ऐसी है जहाँ पर दया का प्रवाह कभी ख़त्म नहीं होता है। मैं घर आई, क्योंकि जब हम ऑर्डर करने लगे तो उसमें एड्रेस पर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि पता नहीं एड्रेस ठीक बताया है कि नहीं बताया है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं घर जाके फ़ोन करती हूँ। फ़ोन करके, क्योंकि इनकी इन्होंने बताया कि मेरी बेटी हरमीत का फ़ोन नंबर है और मैं उनसे बात कर लूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक बारी उनसे फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, फ़ोन पर बात करके उनसे कन्फर्म कर लूँगी। अब जब मैं घर आई, मैंने वो फ़ोन नंबर मिलाया, तो उस फ़ोन नंबर पर आ रहा था जोधपुर ट्यूशन सेंटर, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। पहली बार मिलाया तो बिज़ी आ रहा था, दूसरी बार मिलाया तो नॉट रीचेबल आ रहा था, तीसरी बार मिलाया तो स्विच ऑफ आ रहा था, चौथी बार मिलाया तो कोई संदेश ही प्राप्त नहीं हुआ। तो बराबर में बैठा मेरा बेटा, जो मुझे देखकर सिर्फ हंस रहा था, मैं उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाई, तेरा दिमाग ख़राब है क्या, हर बार हंसे जा रहा है। उसने कहा ये जो फ़ोन नंबर आपको दिया है और आप जो उछल उछल के इतना खुश हो रही हैं कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ, दूसरों से भी करवा देती हूँ, ऐसे तो ना जाने कितने मिलते हैं, एक बार कन्फर्म कर लो ये फ़ोन नंबर भी सही है कि नहीं है। और बात भी ठीक निकली। मैं 3 दिन से लगातार उस फ़ोन नंबर को मिला रही हूँ, अलग अलग नंबर से मिलाकर कोशिश कर रही हूँ कि शायद अभी कोई उठा ले और शायद मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। लेकिन आज इन बातों को 3 दिन हो गए पर किसी ने उस फ़ोन नंबर पर बात नहीं की, किसी ने उठाया ही नहीं। तो दोस्तों मेरे सामने अभी एक समस्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जिनकी आंखों में आंसू थे, जो इतनी पीड़ा बयान कर रहे थे, वो सच थी या जो घर आकर मेरा बेटा मुझे बता रहा है वो सच है। बड़ी असमंजस की स्थिति में हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कृपया इस प्रश्न का हल खोजने में मेरी मदद करें, और यदि इसका उत्तर आपको मिल जाए तो मुझे मेरे ब्लॉग पर प्लीज़ मुझे मेरे ब्लॉग पर इसका उत्तर ज़रूर पोस्ट करें। मेरे ब्लॉग की आईडी है manjugupta.classes.blogspot.in। आपके उत्तर का जवाब रहेगा मुझे, कोशिश करिए जल्दी ही इसका उत्तर मुझे दें। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू गुप्ता आज फिर अपने इस परछाई चैनल में आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया विषय, अहंकार। बच्चों आप सभी जानते हो कि ये अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इसी अहंकार के चलते हम बहुत सारी मुसीबतों के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे अपराधों के शिकार हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि अहंकार वास्तव में है क्या। अहंकार मन का दूसरा आयाम है, यह हमारी एक पहचान है जिसको हमने धारण कर रखा है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो हम समझ सकते हैं कि धरती कहे मैं सबसे बड़ी तो शेषनाग पर क्यों टिकी, और शेषनाग कहे मैं सबसे बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे तो मैं सबसे बड़ा तो कैलाश पर क्यों बसा, कैलाश कहे मैं सबसे बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों उठा, रावण कहे मैं सबसे बड़ा तो बाली की कांख में क्यों फंसा, बाली कहे मैं सबसे बड़ा तो रावण के चरण क्यों पड़ा, और राम कहे मैं सबसे बड़ा तो भक्त के हृदय में क्यों बसा। जिसके हृदय में दया धर्म है वो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो बच्चों, अगर हम गीता में भी बात करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि जब लगने लगे कि अहंकार और बढ़ रहा है तो इसे बढ़ने दो, और इतना बढ़ने दो कि आपके चारों ओर देखोगे कि कितने लोग आपसे अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उसे देखकर और बढ़ाओ अपना अहंकार, और ये अहंकार इतना बढ़ जाना चाहिए कि सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। और इस तरह का भाव आते ही आप या तो अपने आप को निर्मल महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे, और या फिर अपने आप को आपको लगने लगेगा कि मैं कहीं गलत हूँ। अहंकार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इससे आपको हल्कापन महसूस होगा। हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब जानते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, हमारा यही भाव अहंकार कहलाता है। हम दूसरों को छोटा समझें, निम्न समझें और अपने आप को ऊंचा सर्वोत्तम मानने लगे, यह अहंकार का एक सबसे बड़ा कारण है। अपनेपन के अभाव का नाम ही अहंकार है। इसे तोड़ने के लिए हम जो करते हैं दूसरे भी कर सकते हैं, तुम्हें ये मानना चाहिए। यदि इसे नहीं मानते तो हम अहंकारी ठहराए जाएंगे। बच्चों, इस बात को मानना चाहिए कि ना हम श्रेष्ठ हैं, ना ही हम खास हैं, हम तो बस छोटे से कर्तव्यों के दास हैं। अहम में कब फंस जाते हैं इसका पता नहीं चलता, इसलिए सदैव अपने आप को कटघरे में खड़ा करो और खुद अपनी गलतियों को देखो कि हम कहाँ गलत हैं, हमने कहाँ किसी के साथ अन्याय किया है, कहाँ हमने किसी को गलत बोला है, कहाँ हमने किसी को दोषी ठहराया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही कहीं दोषी हों? और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं दोषी हैं तो अपनी गलती को मानो और भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प भी लो। इसके लिए आप दूसरों को भी क्षमा करो और अपने आप के लिए भी दूसरों से क्षमा मांगो। देखिए कितनी जल्दी से हम इस अहंकार से दूर हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। और बच्चों, आज की तारीख में जो कोविड ने हमें दिया, हमने इतना ज़्यादा अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ लिया है, बहुत अच्छी बात है जोड़ना, लेकिन आप लोगों ने उसके इतने सारे दुरुपयोग शुरू कर दिए हैं। अलग अलग ऐप्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा, अशिक्षित भाषा, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, ये सब चीज़ जो आपने सीखा है उसे छोड़ दो, जीवन में कहीं काम नहीं आएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छा मकान हासिल करना चाहते हो, अपना एक स्थायित्व चाहते हो, आसमान में घर बनाना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर बच्चों आगे बढ़ो, वही तुम्हारे लिए सक्सेस की सीढ़ी है। चढ़ो, बढ़ो और मंजू गुप्ता से फिर मिलो एक नई यात्रा के लिए। तब तक के लिए विराम, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू गुप्ता आज आपके सामने अपने इस परछाई चैनल में फिर लेकर आई हूँ एक लम्हा, एक प्रसिद्ध लेखक, एक पात्र, एक किरदार, एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो कभी अपनी ही भाषा में, अपनी ही प्यारी भाषा में फेल हो गया था। बच्चों, फेल होना किसी चीज़ के लिए नुकसानदायक कभी नहीं होता, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। अगर आसमान में घर बनाना है तो बेटा सीढ़ी तो खुद ही बनानी पड़ेगी। अगर छत तक जाना है तो सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य छत तक नहीं, आसमान को छूना है, और वहाँ सीढ़ी खुद बनानी पड़ेगी। जैसे कोई कामयाबी अंतिम नहीं होती, उसी तरह कोई नाकामी भी आखिरी नहीं होती। नाकामी एक पड़ाव ही तो है, और उसके आगे कामयाबी की ओर बढ़ जाना ही जीवन। गिरकर भी उठकर बढ़ते रहने ही गगन चूमते हैं, और एक बार हार कर ठहरने वाले सोचते रह जाते हैं। बढ़ने वालों की भांति भांति की खुशियां बुलाती हैं और ठहरने वालों को दुख घेरते आते हैं। मतलब महत्व गिरने हारने का नहीं, चलते रहने का है। उस नवयुवा की भी कुल कहानी है कि हम जिंदगी को इम्तिहान में डालते रहते हैं और जिंदगी भी इम्तिहान लेती रहती है। युवा ने इंटरमीडिएट में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, अंग्रेजी भाषा में ही फेल हो गया। अब तो बहुत शर्म की और दुख की बात थी कि स्कूल के हेडमास्टर साहब का बेटा प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। स्कूल में भी बहुत सारी किताबें थी, घर में भी बहुत सारी किताबें थी, घर भरा पड़ा था किताबों से। घर के सभी छोटे बड़े पढ़ने में लगे रहते थे, बढ़िया माहौल था पढ़ाई का, फिर भी नाकामी मिल गई। ऐसा कैसे? और ऐसी नाकामी थी जिससे एक साल बर्बाद होना पक्का था। पिता से नजरें नहीं मिलाई जा रही थी। अंग्रेजी इतनी भी खराब नहीं थी कि फेल का दाग लग जाता, लेकिन लगना था लग गया। वह सोच में पड़ गया। निराशा ने उसे बुरी तरह घेर लिया। इस नाकामी ने उसे अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट बना दिया। लेकिन उसने तय कर लिया कि हार नहीं मानेगा। हार मानकर दूसरी दिशा में बढ़ना नहीं है। जिस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने की तमन्ना है वहीं पढ़ूंगा। जरूरी नहीं कि एक ठोकर पर दिशा बदल दी जाए। मन मारकर दिशा बदलना हार ना सही, समझौता तो है ही। जिंदगी भर अफसोस रह जाएगा कि जहां पढ़ने का सपना था वहां पढ़ नहीं सका। तो ऐसे में यही सही कि प्रवेश परीक्षा में फिर बैठा जाए और जो कमजोरी है उसे 16 आना दूर कर लिया जाए। माना कि स्कूल बार बार बदला, शहर बदला, पढ़ने का माहौल स्थिर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसे फेल होकर लोगों को बोलने का मौका दे दिया जाए। अगली बार जब सफलता मिल जाएगी तो लोग अपने आप ही मुंह बंद कर लेंगे। हाँ, एक बार फेल हो गया था पर बाद में बेहतर अंकों से पास भी हुआ। अंग्रेजी में मिली एक हार ने निराश तो किया था, लेकिन मन को हरा नहीं सकी। वापस युवा ने पढ़ाई में पूरा मन लगा दिया। घर के पास झील की ओर रोज नियम से निकलता। साथ में कोई ना कोई अंग्रेजी की किताब भी होती थी, कभी शेक्सपियर तो कभी चार्ल्स डिकेंस, कभी जॉर्ज एलियट तो कभी जॉर्ज मिल्टन। पढ़ने का सिलसिला चलता रहा। अंग्रेजी रगों में बहने लगी, दिमाग में बसने लगी। विद्वता इस मुकाम पर पहुंच गई कि अब आओ सवाल पूछो जहां से पूछना है। किताब दर किताब पढ़ाई ने सारे दुखों से तो बचाया ही, रोज नए अनुभव, नई दुनिया से भी परिचित कराया। और मन में तय हो गया कि आगे लेखक ही बनूंगा और कुछ नहीं। पढ़ाई से आगे का जीवन बहुत आसान लगने लगा था। साथ ही बहुत पढ़ने से कुछ लिखने के लिए प्रेरित हुआ। कॉलेज पहुँचते पहुँचते कुछ लिखना भी शुरू कर दिया। ऊंची नौकरी मिली, ऊंची शिक्षा प्राप्त की, 4 दिन की सेवा संपन्न हुई और फिर बैठा कि भाई लेखक ही बना जाए। बस ऐसे ही एक दिन बैठा था और बैठे बैठे पहली ही पंक्ति मैंने लिखनी शुरू की, और वो पंक्ति थी, वह सोमवार की सुबह थी। तभी उन्हें अपने मन की आंखों से एक रेलवे स्टेशन दिखने लगा जिसका नाम था मालगुड़ी। कथाओं से सराबोर यह तरह तरह के नायक और पात्रों का भरा पूरा शहर। उसी मालगुडी शहर में एक स्वामी और उसके मित्र भी दिखाई दिए, और उसके बाद तैयार हुई एक अद्भुत पुस्तक, स्वामी एंड फ्रेंड्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन लेखक आर के नारायण, जिन्होंने अंग्रेजी उपन्यास और कहानियों की रचना की। ये देश के ऐसे पहले रचनाकार थे, अंग्रेजी रचनाकार थे विशेष रूप से, जिनके लिए लेखन पूर्णकालिक कार्य था। यानी उन्होंने पूरा कार्य लेखन का ही किया, इसे में पूरा समय लगा दिया और रोज़ एक नई कहानी, नई बातें करते थे। उनकी किताबों कहानियों पर बहुत सारे धारावाहिक बने, फिल्में भी बनी। फेल होने के बाद की कड़ी पढ़ाई कदम कदम पर काम आई। एक नाकामी लंबी कामयाबी में बदल गई। लेखन के पहले वर्ष में 10 रुपये भी जेब नहीं थे, लेकिन एक दिन वह भी आया जब हर साल लेखन से ही लाखों रुपये बरसने लगे। देश की आज़ादी के बाद कभी अमेरिका तो कभी यूरोप बुलाए जाने लगे। अंग्रेजी के महान लेखक को पढ़ने के बाद आज कोई विश्वास नहीं करता कि वे कभी अंग्रेजी में फेल हुए थे। तो बच्चों, मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि नाकामयाबी आत्महत्या की ओर नहीं लेकर जाती, कामयाबी की ओर लेकर जाती है। बस फ़र्क इतना है कि आप अपने अंदर झांक कर देखो कि गलती कहाँ हुई, कमज़ोरी कहाँ रह गई। उन चीज़ों को दूर करो और फिर देखो हम उनको कैसे दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटे से छोटा आदमी भी ये सोच कर ना बैठे कि मेरे पास साधन नहीं है। साधन अपने आप आपके पास खींच कर आते हैं, बशर्ते कि आप एक हौसला बनाओ और एक पत्थर आसमान की तरफ उछाल कर देखो, और फिर देखो आसमान में भी छेद होगा। तो इसी कहानी के साथ, इसी उद्देश्य के साथ कि अगली बार हम सभी ऐसे बच्चों से मिलेंगे जिनके अंदर हौसला होगा, जो आत्मविश्वास से परिचित होंगे और कहीं ना कहीं निराशा से दूर होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप मंजू गुप्ता को अलविदा कहें। धन्यवाद।